समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो आकर्षिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट आकर्षिता। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi asked states to develop at least one world-class tourist spot under One State, One Global Destination initiative, chairs Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi.
भारत ने दशकों से जारी सीमा पार आतंकवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar expresses gratitude over Germany's support to India's fight against terrorism and its right to defend itself.
मॉनसून निर्धारित समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा।
In badminton, Kidambi Srikanth storms into the men's singles final of Malaysia Masters tournament in Kuala Lumpur.
और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट टीम की घोषणा की।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, on May 24th, Akarshita, we observe World Schizophrenia Day, a day to raise awareness about this complex and often misunderstood mental health condition. We are here to bring some important information your way, along with a bit of hope and understanding.
मानसिक पीड़ा से स्वस्थ शरीर भी संताप को प्राप्त कर लेता है। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं दुनिया भर में गंभीर चिंता का विषय हैं। हम सभी अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर तो ध्यान देते ही हैं, साथ ही हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ही उतना भी ध्यान देना चाहिए। आज हम विश्व सिज़ोफ्रेनिया दिवस मना रहे हैं। इसका उद्देश्य इस गंभीर मानसिक रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोगियों की सहायता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना है। सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया भर में 300 में से एक व्यक्ति को सिज़ोफ्रेनिया की दिक्कत हो सकती है। सिज़ोफ्रेनिया एक दीर्घकालिक और गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को वास्तविकता की धारणा में भ्रम होता है। ये व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक स्थिति, सोचने समझने की क्षमता सभी को प्रभावित कर सकती है।
Yes, Akarshita, May 24th was declared as World Schizophrenia Day to honor Dr. Philippe Pinel of France. He emerged as one of the significant personalities to give treatment and human care for mentally unwell people.
सिज़ोफ्रेनिया आपके जीवन को कई प्रकार से प्रभावित कर सकती है, जैसे कि आपको मतिभ्रम हो सकता है और इससे प्रभावित लोगों को भ्रम और डर बना रहता है और मरीज उन चीजों को भी वास्तविक मानने लगते हैं जो असल में होती ही नहीं।
Absolutely, and schizophrenia is a serious mental disorder characterized by distortions in thinking, perception, emotions, language, sense of self and behavior. Schizophrenia is a very common brain disorder which causes people to abnormally interpret the sense of reality. Yes, its impacts are hallucinations, delusions, reduced speaking, reduced ability to understand information and decision making, trouble in focusing or paying attention, etc.
ये आमतौर पर किशोरावस्था के अंत या युवावस्था की शुरुआत में शुरू होता है। और अगर बात करें श्रोताओं की, आज हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सिज़ोफ्रेनिया ठीक हो सकता है या नहीं, या जो व्यक्ति इससे पीड़ित है वो कैसे इससे उभर सकता है। तो सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोग संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं, लेकिन उन्हें इस दौरान कुछ अतिरिक्त मदद की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि वो थेरेपी ले सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और कहते हैं कि कुछ ऐसे डोपामिन होते हैं माइंड में जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो दवाइयां ले सकते हैं और काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से भी इसे ठीक किया जा सकता है।
यस, एंड देयर इज नो एग्जैक्ट कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज ड्रग यूज आइडेंटिफाइड एज रिस्क फैक्टर्स। Schizophrenia is a treatable disorder. Therapy and support can help people learn social skills, cope with stress, identify early warning signs of relapse, and prolong periods of remission. Treatment is, of course, symptom-based.
तो आइए इस महत्वपूर्ण और अत्यंत आवश्यक विषय पर हम अपनी बातचीत जारी रखें और इस पर ध्यान केंद्रित करें अपना और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे लोगों के प्रति उदारता, समझ और सहानुभूति को अपनाएं। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। और अभिषेक, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर खबर लेकर आए हैं, और वो विषय क्या आप गेस कर सकते हैं? इट इज अबाउट आवर वार्डरोब, कि हम इतने ढेर सारे कपड़े उसमें रखते हैं, ना हमें उसे पहनना है, कुछ तो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, कुछ तो हम लेके रखते रहते हैं, जो है कभी इन्फ्लुएंसर से देख के हमने खरीद लिया, तो कभी हम किसी और चीज से जो है इन्फ्लुएंस हो गए, और दिन पे दिन इतने कपड़े हो जाते हैं कि जब हमें पहनने होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि पहनना कौन सा है।
सो यू नीड टू ऑर्गेनाइज देम इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे।
जी, तो व्यक्ति का परिधान उसके व्यक्तित्व को निखारता है और अपना व्यक्तित्व अधिकाधिक आकर्षक हो इसलिए हम नए नए परिधान खरीदते रहते हैं। और हमारी अलमारी एक दो बार पहने हुए कपड़े भी हमें पुराने और आउट फैशन लगने लगते हैं। ये कपड़े ना तो फेंके जाते हैं और ना ही पहने जाते हैं। यही समस्या बनी हुई है कि इन कपड़ों का क्या किया जाए। छत्रपति संभाजी नगर निगम ने इसका कुछ हल खोजने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
आपके लिए पुरानी हो चुकी वस्तु किसी और के लिए नई हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम ने एक नई पहल की है। नगर निगम अब घर घर से ऐसे कपड़े जमा करने वाली है जो पुराने तो है लेकिन अच्छी स्थिति में है। यहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने अपनी यह योजना आकाशवाणी के साथ साझा की।
जैसे माननीय पंत प्रधान जी ने बोला है कि इंडिया का बिगेस्ट टेक्सटाइल मार्केट है और उसी हिसाब से जो यूज्ड क्लॉथ्स हैं और उसका रिसाइकिल होना बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम शहर में देखा जाता है कि बहुत यूज्ड क्लॉथ्स को क्या करना है समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोग फेंक देते हैं या कचरे की गाड़ी में दे देते हैं। इसलिए हमने इकोसत्व हमारा जो एनजीओ पार्टनर है उनके साथ मिलके महाराष्ट्र का सेकेंड जो है टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटी, जिसमें हम हर महीना एक तारीख को स्पेशल गाड़ी हर वार्ड में घूमेगी, हर जोन में घूमेगी, और उससे जो आपके यूज क्लॉथ्स हैं वो अगर आयरन करके साफ सफाई करके अगर हमको दें तो हम उसको, अगर अच्छे कपड़े हैं वो हम अपस्केलिंग कर सकते हैं। अपस्केलिंग मतलब उसको थोड़ा बहुत अच्छा करके किसी जरूरतमंद को हम दे सकते हैं, और डाउन स्केलिंग जो कपड़ा को पहन नहीं सकते लेकिन कई और इंडस्ट्रियल यूसेज में भी आ सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो चीज बिल्कुल ही यूज नहीं हो सकती है वो हम को जनरेशन के लिए दे सकते हैं। पहले जो लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन वॉल्स वगैरह यूज क्लॉथ का बनाए थे लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं होता था, तो हमने ये टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटी जो है शहर में रखे और वो वॉक इन भी किया जा सकता है, मतलब कभी भी आके हमारा जो टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटी है रेलवे स्टेशन एमआईडीसी एरिया में वो आके हमको दे सकते हैं, ताकि जरूरतमंदों को हम वो कपड़े दे सकते हैं।
छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम की इस योजना को सबका साथ मिले तो मानवता और पर्यावरण रक्षण दोनों क्षेत्रों में यह योजना एक मील का पत्थर साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजी नगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
ऑन ट्यूजडे मिजोरम मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट, मार्किंग अ मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट इन द स्टेट्स एजुकेशनल जर्नी। वी हैव अ रिपोर्ट।
Chief Minister of Mizoram Lal Duoma, in the presence of Union Minister of State for Education Jayant Chowdhury, declared Mizoram a fully literate state on Tuesday, marking a historic milestone in its educational journey. This achievement places Mizoram as the first state in India to achieve full literacy. The event, held at the auditorium of Mizoram University at Tanshil locality in Aizawl, stands as a testament to the collaborative spirit shared by the people and government of Mizoram in their noble pursuit of inclusive education and the empowerment of every citizen through a gift of literacy.
I hereby with pleasure declare Mizoram as the first fully literate state in the country.
Gracing the historic occasion, Union Minister of State for Education Jayant Chowdhury congratulated the people of Mizoram for achieving such a milestone in the field of literacy movement in the country.
As you know, our definition of literacy, the Indian conceptualization has now been accepted globally. It is a holistic definition. It is agnostic to language, which means that for the people who don't understand, the audience outside this educational institution, I want to tell them, what do we mean when we say fully literate? It doesn't matter if you don't know English or Hindi. You could be understanding, reading or writing a local language. You could be comprehending concepts. That is what we are trying to capture in our definition of being literate. And it is well-rounded in the sense that digital skills, financial skills, being a good citizen, an active citizen, that is also part of the mandate as NEP, National Education Policy, gives us. 98.2% of Mizoram's population, age 7 and above, can now read or write. Of course, it's not just a statistic. It is a powerful narrative of community strength, something that you can take pride in. It's a cultural pride and it's a shared vision for an enlightened future.
With implementation of the ULAS NILP, the state now stands first in literacy rate in the entire country at 98.2% due to concerted efforts made by the 292 volunteer teachers. For Parikrama, this is Isaac from Akashvani News, Aizawl.
Jo bhara nahi hai bhavon se behti jisme rasdhar nahi, wo hriday nahi hai patthar hai, jisme swadesh ka pyar nahi. इन्हीं पंक्तियों को वास्तविकता में बदला है कक्ष के लोगों ने। पहलगाम हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो सीमा पार किसी भी हलचल से निपटने के लिए पाकिस्तान से सटे कच्छ जिले में सेना हाई अलर्ट पर थी। वहीं कच्छ के सीमावर्ती गांवों के लोगों ने भी अपनी जागरूकता दिखाई। इस अशांत और तनावपूर्ण हिंसक स्थिति के बीच कच्छ के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों ने अपना हौसला और विश्वास बनाए रखा और हर परिस्थिति पर काबू पाने की अपनी प्रतिबद्धता और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम का परिचय दिया।
कच्छ के कई गांव सीमा से सटे हुए हैं। इन गांवों में रहने वाला हर नागरिक सीमा पर अडिग पहाड़ की तरह खड़ा होकर देश और सेना के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। सीमा से सटे कच्छ के खदीर क्षेत्र के लोगों का स्वभाव अनोखा है। उनका अपना एक अलग अंदाज, दृढ़ता और उत्साह है। इस क्षेत्र के कई गाँव पाकिस्तान सीमा से सटे हुए है और यहाँ के कई युवा सैन्य और अर्धसैनिक बलों में सेवारत है। इतना ही नहीं, यहाँ सैन्य और अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त सैनिकों की भी बड़ी संख्या है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारी तनाव था तब सीमावर्ती गांव खदीर क्षेत्र के सेवानिवृत्त सैनिक सेना का साथ देने के लिए उत्साहित थे। पूर्वी कच्छ के खदीर क्षेत्र के सीमावर्ती गांव कल्याणपुर के भच्चूभाई वेलाभाई आहिर स्वयं अर्धसैनिक बल में सेवा देने के बाद 2 साल पहले ही सेवानिवृत्त हुए है। फिलहाल वे खेती किसानी में लगे हुए है और साथ ही इस क्षेत्र के जागरूक नागरिकों और अन्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने में भी लगे हुए हैं। बॉर्डर विंग से रिटायर हुए बच्चू भाई कहते हैं कि सेना में हमने हर हथियार की ट्रेनिंग ली है, मुझे कई हथियार चलाने आते हैं।
यहाँ के हमारे बॉर्डर विस्तार के हम तो ट्रेनिंग लिए हुए हैं, रिटायर हैं, फिर भी यहाँ के जो हमारे पब्लिक के हैं ना, आम आदमी जो गाइड वेस्ट चलाने वाले, वो भी अनपढ़ है पर कोठा सूझ उसकी बहुत ऊपर है। वो लोग ऊंट निकल जाता पता लगता है कि ऊंट खाली गया भरा हुआ गया, एक आदमी एक दो आदमी है वो भी पहचान सकते हैं। और यहाँ के जो कपड़े पे पहचान लेते हैं और वो आदमी उसके जूते पे कि यहाँ का ही जूता नहीं है, जूता भी बाहर का है, पाकिस्तान का आदमी यहाँ का नहीं है। तो यहाँ के हमारे बॉर्डर के रहने वाले सभी संतरी अलर्ट रहते हैं। और दूसरा तो ये है साहब जी कि हमारे यहाँ के पब्लिक जो फौज आती है अपने जवानों आर्मी बीएसएफ सीएसएफ कोई भी फौज है नेवी है, मतलब उसके लिए तो हमारे गांव के आदमी स्तर पर तैयार रहते हैं कि उसको आर्मी वाले को भाई को बोलते साहब जी आप आए हैं तो कुछ जरूर पड़े पानी खाना कोई ट्रैक्टर गाड़ी कुछ भी जरूर पड़े तो हम तैयार हैं। हमारे बॉर्डर के आम पब्लिक लेडीज जेंट्स जवान सब तैयार रहते हैं।
सेना से रिटायर हुए ऐसे जवानों को सलाम, उनके जज्बे को सलाम और उनकी देशभक्ति को सलाम। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी भूज से परेश मारू।
आज महिलाएं देश के ऊंचे ऊंचे ओहदों पर विद्यमान हैं। और अभिषेक, क्या आप किसी एक किसान का नाम बता सकते हैं?
Well,
किसी भी किसान का?
I can tell you the name of a farmer in my village. Well, his name is Dodon.
Dodon, हाँ। तो अभी आप देख सकते हैं हम जब किसान कहते हैं तो किसी के भी मन में एक ऐसा नाम आता है जो किसी पुरुष का ही होता है। पर हमारे देश में बहुत ढेर सारे किसान हैं जो महिलाएं हैं। तो आज हम इन्हीं की बात कर रहे हैं कि किसानों को अच्छी खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मृदा परीक्षण केंद्र खोला गया है। खास बात यह है कि इस केंद्र को सिर्फ महिलाएं चला रही हैं जिन्हें मिट्टी दीदी कहा जाता है। ये मिट्टी दीदी जिले के साथ ही प्रदेश के दूसरे जिलों से भी आने वाले किसानों की मिट्टी की जांच कर उन्हें जानकारी दे रही हैं।
मिर्जापुर जनपद के शिखर गांव में स्थित मृदा परीक्षण केंद्र की मिट्टी दीदियों ने मृदा परीक्षण के जरिए किसानों की जिंदगी आसान कर दी है। इन मिट्टी दीदियों को तेलंगाना, आसाम और पंजाब के ट्रेनों ने ट्रेंड किया है। यहां प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच के लिए हाईटेक इंतजाम है और मिट्टी की सभी बीमारियों का पता किया जाता है। साथ ही मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए किसानों को सुझाव भी दिया जाता है। जिले के कृषि उप निदेशक विकेश पटेल ने बताया कि मिर्जापुर के साथ रायबरेली, बाराबंकी, सोनभद्र, चित्रकूट जनपद के किसान मिट्टी की जांच आकर यहां करा रहे हैं।
इसमें उनके द्वारा मृदा परीक्षण का लैब स्थापित किया गया जिसमें महिलाओं के द्वारा जो है ये महिला मृदा सखी के रूप में नामित की गई है और इनके माध्यम से 12 पैरामीटर पे मिट्टी की जाँच की जा रही है। एफपीओ के द्वारा जो है अपने सदस्यों जिनके सदस्य हैं एफपीओ सदस्यों की मिट्टी की जांच करें, साथ ही साथ अन्य जनपद और अपने मिर्जापुर जनपद के अन्य किसानों का भी मिट्टी जांच करें। महिला सशक्तिकरण की तरफ तरीके से बढ़ावा है, वहां काफी अच्छा जो है महिलाओं का पहल है और इससे जो है अन्य एफपीओ की महिलाएं जो है वो भी इससे प्रेरित होकर इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे।
जिले में 92 किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ है जिसमें शिखर नवचेतना एफपीओ मृदा परीक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। यहां 12 पैरामीटर पर मिट्टी की जांच की जा रही है। नवचेतना एफपीओ की चेयरमैन अपर्णा श्रीवास्तव ने बताया कि हर महिला साइंटिस्ट किसानों को बताती है कि मिट्टी कैसे खेत से निकालनी है और प्रयोगशाला तक लाना है।
हमारे एफपीओ में सभी डायरेक्टर्स महिलाएं हैं और उस मिट्टी जांच केंद्र में हर एक साइंटिस्ट भी एक महिला है जो किसानों की मिट्टी की जांच करती है और उस मिट्टी की जांच से उनके उत्पाद में वृद्धि होती है और उनको एक बेटर इनकम होती है।
मिट्टी जांच के लिए किसानों से महज 150 रुपए लिया जाता है। पूरे होने पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मिट्टी की जांच की जा रही है। इस काम में भी ये एफपीओ हाथ बटा रहा है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण का भी ये केंद्र बड़ा उदाहरण बन गया है। परिक्रमा के लिए लखनऊ से शैलेंद्र शर्मा।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल को टीम का कप्तान बनाया गया है जबकि ऋषभ पंत उप कप्तान की भूमिका निभाएंगे। और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस। इसी क्रम में सबसे पहले हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को।
आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी करतार सिंह सराभा को स्मरण कर रहे हैं। करतार सिंह का जन्म 24 मई पंजाब के सराभा गांव में हुआ था।
केवल 19 वर्ष की उम्र में ही करतार सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। वो भगत सिंह सहित अनेक स्वाधीनता सेनानियों के लिए साहस और प्रेरणा के स्रोत बन गए थे।
करतार सिंह का गांव कई बार पड़े सूखे से तबाह हो गया था और बेहतर अवसरों की खोज में सराभा जुलाई 1912 में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वे बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी करना चाहते थे।
अमेरिका में विशेष रूप से उपनिवेशों के प्रवासी लोगों के साथ अमरीकियों की शत्रुता पर उन्हें बहुत क्रोध आया। कैलिफोर्निया में सराभा को उपनिवेश भूमि से आने वाले लोगों के अपमान का पूरा एहसास हुआ। उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में आक्रोश प्रकट करना शुरू किया। 1913 में ओरेगोन में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़कर अपने लोगों की प्रतिष्ठा बहाल करना था।
गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सराभा ने गदर पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने गदर अखबार के पंजाबी संस्करण की पहल की जिम्मेदारी संभाली और वहां रह रहे भारतीयों को जागरूक करने के लिए उसका प्रकाशन शुरू कर दिया।
जुलाई 1914 में यूरोप प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण का अवसर समझा। गदर पार्टी ने भारतीयों को संगठित करने की योजना बनाई। करतार सिंह गदर पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में शामिल थे जो 1914 में भारत वापस आ गए।
भारत आते ही अंग्रेजों ने गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे विचलित हुए बिना करतार सिंह और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों ने पंजाब में छावनियों में घुसपैठ करके सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं की विद्रोह की योजना पर अमल होने से पहले ही अंग्रेजों को भनक लग गई और करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध इस मुकदमे के तहत लाहौर में कई सुनवाई हुई और पकड़े गए कार्यकर्ताओं पर विद्रोह में शामिल होने के आरोप लगाए गए। करतार सिंह सराभा ने अदालत में माफी नहीं मांगी और गर्व से कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध अपने लोगों को एकजुट करना मेरा कर्तव्य है। उनकी अटल देशभक्ति ने जजों को बेहद नाराज कर दिया। 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में 19 वर्ष के सराभा और उनके साथी विष्णु गणेश पिंगले को फांसी दे दी गई।
करतार सिंह सराभा की बहादुरी, देशभक्ति के कार्य और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता अतुलनीय है और उनका बलिदान आज भी सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आकाशवाणी की ओर से महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी को भावभीनी श्रद्धांजलि।
एंड वी ऑल्सो रिमेम्बर मुकुल देव हु पास्ड अवे टुडे। ही वाज एन इंडियन टेलीविजन एंड फिल्म एक्टर। ही इज नोन फॉर हिज वर्क इन हिंदी फिल्म्स, पंजाबी फिल्म्स, टीवी सीरियल्स एंड म्यूजिक एल्बम्स। He has also acted in a few Bengali, Malayalam, Kannada and Telugu films. He received the 7th Amrish Puri Award for Excellence in Acting for his role in Yamla Pagla Diwana. He died at the age of 54 today after a brief illness. And also moving on, Asrar Ul Hasan Khan passed away on this day in 2000, better known as Majru Sultanpuri. He was an Indian Urdu poet and lyricist in the Hindi language film industry. He wrote lyrics for numerous Hindi film soundtracks. He was one of the dominant musical forces in Indian cinema in the 1950s and early 1960s and was an essential figure in the progressive writers movement. He is considered one of the finest avant-garde Urdu poets of the 20th century literature. Let's listen in to one of his hit compositions from the film Kayamat Se Kayamat Tak.
Ae mere hum safar ek zara intezaar सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की।
मजरूह ने वर्ष 1946 में आई फिल्म शाहजहां के लिए गीत जब दिल ही टूट गया लिखा, जो बेहद लोकप्रिय हुआ। ये सुनते हैं ये गीत।
जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। जब
के बाद मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार नौशाद की सुपरहिट जोड़ी ने अंदाज, साथी, पाकीजा, तांगीवाला, धर्मकांटा और गुड्डू जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म शाहजहां के बाद महबूब खान की अंदाज और एस फाजिल की मेहदी जैसी फिल्मों में अपने रचित गीतों की सफलता के बाद मजरूह सुल्तानपुरी बतौर गीतकार फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। उन्हें 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज प्रसिद्ध बांग्ला कवि, संगीत सम्राट, संगीतज्ञ और दार्शनिक काजी नजरुल इस्लाम की जयंती है। नजरुल ने लगभग 3000 गानों की रचना की और साथ ही अधिकांश को स्वर भी दिया। इनके संगीत के आजकल नजरुल संगीत या नजरुल गीत नाम से भी इनके संगीत को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
তারা রইল হকাপাট ভেঙে ফেলে করে রেলোপাট রক্ত জমাট শীতল পূজার পাশানে বেদি ওরে ও তরু নিশান বাজা তোর প্রলয় বিশান ধ্বংস নিশান ফুটুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি ওরে ও তরু নিশান বাজা তোর প্রলয় বিশান ধ্বংস নিশান ফুটুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি।
Qazi Nazrul Islam was born in the Bardhaman district of West Bengal on this day. He was a Bengali poet, short story writer, journalist, lyricist and musician. He is the national poet of Bangladesh. Nazrul produced a large body of poetry, music, messages, novels and stories with themes that included equality, justice, anti-imperialism, humanity, rebellion against oppression and religious devotion. Let's listen in to another of Nazrul Giti.
বৌ কথা কও কথা যবি মানিনি বৌ কথা কও কথা যবি মানিনি বৌ কথা কও সেধে সেধে কেঁদে।
उन्हें वर्ष 1960 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मान किया गया।
Yes, and also we are remembering a very famous personality today, Akarshita. Bob Dylan was born on this day in 1941. He's an American singer-songwriter, considered one of the greatest songwriters of all time. Dylan has been a significant figure in popular culture over his nearly 70-year career, with an estimated more than 125 million records sold worldwide. He is one of the best-selling musicians of all time. Dylan added increasingly sophisticated lyrical techniques to folk music in the early 1960s, infusing it with the intellectualism of classical literature and poetry. His lyrics incorporated political, social and philosophical influences, defying pop music conventions and appealing to the burgeoning counterculture. Dylan has received numerous accolades, among them an Academy Award, 10 Grammy Awards and a Golden Globe Award. He was honored with the Kennedy Center Honors in 1997, the National Medal of Arts in 2009 and the Presidential Medal of Freedom in 2012. And Dylan has been inducted into the Rock and Roll Hall of Fame, the Nashville Songwriters Hall of Fame and the Songwriters Hall of Fame. He was also awarded the Pulitzer Prize Special Citation in 2008. And the 2016 Nobel Prize in Literature for having created new poetic expressions within the great American song tradition. Let's listen in to his hit track, The Times They Are A-Changing.
Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving.
आज हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार राजेश रोशन लाल नागरथ का जन्मदिन है। सन 1975 से अपना करियर शुरू करने वाले राजेश रोशन ने लगभग सभी बड़े निर्देशकों के साथ काम किया है। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान जूली गाने से मिली।
दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए।
Radhish Roshan shot to fame with the score for the 1974 film Kuwara Baap, and of course this song that you're hearing in the background, the 1975 film Julie, for the latter he won the Filmfare Best Music Director Award, isn't it, Akarshita? And also we remember Eric Daniel Pierre Cantona, who was born on May 2nd, 1966. He's a French former professional footballer who is currently an actor. In his football career, Eric Cantona was a physically strong, hard-working and tenacious player. He combined technical skill and creativity with power and goal-scoring ability. Mostly utilized as a deep-lying forward, he was also capable of playing as a center forward, as a dedicated striker, as an attacking midfielder, or as a central midfielder. He was named by Pele in the FIFA 100 list of the world's greatest living players in 2004. And also, I think Bachendri Pal was born on this day.
जी, आज विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल का जन्मदिन है. पहाड़ों की रानी बचेंद्री पाल पर्वत शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की पांचवीं महिला पर्वतारोही हैं. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता और अभिषेक को. परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. नमस्कार.